वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा। तो हम भगवद्गीता से चर्चा करेंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 14 15 और 16 तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ और उसका अनुवाद फिर हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो अध्याय 8 अध्याय का शीर्षक है भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 14 अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तश्च योगिनः। उसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। श्लोक संख्या 15 माम पैत्या पुनर्जन्म दुःखालयं अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगतः। अनुवाद, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। श्लोक संख्या 16 आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्यतु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद इस प्रकार से है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये जो अध्याय है जिसका शीर्षक भगवत प्राप्ति है, और हम यदि गंभीरता से सोचते हैं भगवत गीता के बारे में, तो भगवत गीता का एक में जो उद्देश्य है या प्रयोजन है वो यही है कि भगवान से अलग हुए जो बद्ध जीव हैं वापस भगवान का धाम वो प्राप्त करें। तो भगवान इस अध्याय में जो अर्जुन ने सातवें अध्याय में भगवत ज्ञान के बारे में श्रवण किया और सातवें अध्याय की शुरुआत में ही भगवान ने थोड़ा सा उनको डांट लगाई अर्जुन को, तत् सुनो, क्या बोला उन्होंने कि अर्जुन अभी थोड़ा सा सावधानी से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मया सक्त मना पार्थ योगम युजन मदाश्रया अशय समग्रमा यथा ज्ञाश्यसि तस्मिन्। कि हे अर्जुन, मैं ऐसे ज्ञान का उपदेश प्रदान कर रहा हूं कि जिस ज्ञान को यथोचित रूप से श्रवण करने से, समझने से तुम मेरे प्रति आसक्त हो सकते हो। तो हमारे दुखों का कारण एक ही है, कृष्ण के अलावा हम बाकी वस्तुओं में बहुत अधिक आसक्त हो गए हैं। कृष्ण के अलावा हम किसी वस्तु से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हमारा हृदय कृष्ण के अलावा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान की ओर खींचा जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि वो मेरे दुखों का कारण फ्यूचर में बनने वाली है वो वस्तु, स्थान या व्यक्ति। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कहते कि अर्जुन, इस ज्ञान की खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि इसको केवल श्रवण करने से, केवल समझने से तुम मेरी ओर आसक्त हो जाओगे। और जीव का स्वभाव है कि वो प्रेम किए बिना इस संसार में रह नहीं सकता, है कि नहीं? एवं कुत्ते से भी हाँ व्यक्ति प्रेम करने लगता है। तो मतलब हम किसी से बहुत अधिक लगाव रखे बिना जीवित नहीं रह सकते या अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि ये आत्मा का नित्य स्वभाव है, आत्मा का ये स्वरूप है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि लेकिन हम भगवान के अलावा बाकी वस्तुओं में या व्यक्तियों से प्रीति अधिक रखते हैं, वो हमारे दुखों का कारण बनता है। तो भगवान ने बहुत सारे ज्ञान का वर्णन किया और सातवें अध्याय में ये भी बताया चार प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, शरण ग्रहण नहीं करते हैं, उनके बारे में बताया। अभी फाइनली भगवान उस अध्याय के आखिरी में बताते हैं कि किस प्रकार से आप मुझे समझ सकते हो। तो अर्जुन ने जब भगवान से इस अध्याय को श्रवण किया तो फिर अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आए। तो आठवां अध्याय जैसे ही शुरू होता है अर्जुन अपने आठ प्रश्नों को लेकर कृष्ण के सामने रखता है। तो पहले जो आठवें अध्याय के दो श्लोक हैं उनमें अर्जुन ने आठ प्रश्न रखे और फिर भगवान ने उनके एक एक करके उत्तर देना शुरू कर दिया। तीसरे और चौथे श्लोक में अर्जुन को भगवान ने सात प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अर्जुन के प्रश्न थे भौतिक जगत क्या है, परमात्मा आदि के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में, ब्रह्म या आत्मा क्या है, ऐसे बहुत सारे उन्होंने प्रश्न पूछे। और फिर ये भी प्रश्न पूछा, आठवां प्रश्न जो इस अध्याय का क्या है, इस अध्याय की नींव है। पूरा ये जो अध्याय भगवान के सामने जो आठवां प्रश्न प्रस्तुत किया उसके ऊपर ये अध्याय बेस्ड है। और वो प्रश्न क्या था भगवान तो वो पूछते हैं कि जो आपके भगवत भक्ति में लगा है तो मृत्यु के समय वो किस प्रकार से आपको प्राप्त कर सकता है, उसकी गति क्या है, उसके बारे में मुझे बताइए, या वो आपको कैसे जान पाता है। तो फिर भगवान उस आठवें प्रश्न का उत्तर देने के लिए श्लोक नंबर 5 से लेकर 8 तक वर्णन करते हैं और फिर भगवान बताते हैं उसके उत्तर में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो यहां ये विधि भगवान ने बताई कि अंत काल में मृत्यु के समय में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करके ये नश्वर अशाश्वत भौतिक शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान कहते अंत काल में मेरा स्मरण करना ये वांछनीय है। तो भक्ति योग या जीवन की सफलता क्या है? अंते नारायण स्मृति। किसकी स्मृति हो अंत काल में? भगवान कृष्ण का स्मरण हमें हो। तो मृत्यु हो की जो वेदना है वो बहुत भयानक है। मैं आज सुबह भागवतम पढ़ रहा था जिसमें दधीचि मुनि के बारे में वर्णन आ रहा था। तो जब इंद्र दधीचि मुनि के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वो दधीचि मुनि को कहते हैं, भगवान ने उनको कहा क्योंकि ये इंद्र एक आसुर से बहुत अधिक परेशान थे। अब देखो व्यक्ति के पास जितना बड़ा ऐश्वर्य ऑपुलेंस पद पोजीशन है उतनी बड़ी बड़ी समस्याएं उसके पीछे लगी रहती हैं। हमें लगता है कि इसके पास बड़ी बड़ी मोटर कार है, बड़े घर है, बहुत समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके पीछे बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमेशा होती हैं। इंद्र तो इतना स्वर्गाधिपति है, स्वर्ग के राजा है, तो उनके पास भी बहुत सारी समस्याएं हैं। वो एक क्षण के लिए भी शांत चित्त नहीं बैठ सकते, वो हमेशा चिंतित रहते हैं कि मेरा ये ऐश्वर्य, मेरा ये जो चेयर है, चेयर कोई छीन ना ले, मेरी जगह कोई और इंद्रपद ना ले, तो हमेशा वो परेशान रहते हैं। तो एक वृत्रासुर, एक आसुर प्रकट होता है इंद्र को मारने के लिए। तो इंद्र चिंतित होकर भगवान की ओर भागते हैं और उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं और उनको कहते हैं कि आप क्या करो। भगवान को कहते कि आप मुझे बता बचाइए कि उस आसुर का वध कैसे कर सकता हूं मैं। भगवान ने कहा एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि अभी पृथ्वी में एक महान ऋषि निवास कर रहे हैं, एक महान मुनि का वास्तव्य है, उनका नाम है दधीचि। तो दधीचि मुनि के पास जाओ और उनसे डोनेशन मांगो। क्या मांगो? जैसे हम जाते हैं ना, जन्माष्टमी आ गई, पुस्तक वितरण आ गया, हाँ लोगों से जाकर मांगते कि आप थोड़ा हमें डोनेशन दे दो, दान दे दो। तो भगवान ने कहा जाओ दान मांगने उस मुनि के पास। और क्या दान मांगो? उसका शरीर। क्या दान मांगो? कोई ऐसा है डोनर जो अपना शरीर दान में दे दे? आप किसी के पास जाइए और कहिए कि हमें आपका शरीर चाहिए, क्योंकि आपके शरीर की जो हड्डियां हैं वो हमें निकालनी है और उससे एक हथियार बनाना है। तो भगवान ने कहा दधीचि मुनि को बोलो कि तुम्हारा शरीर चाहिए और उस तुम्हारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनसे वज्र बनाना है, जो बहुत प्रभावशाली अस्त्र है जिसके द्वारा वृत्रासुर को मार सकते हो। तो दधीचि मुनि गए, दधीचि मुनि के पास ये देवता गए इंद्र आदि, उनके कुटिया में जाकर उनको प्रणाम किया। दधीचि मुनि ने कहा बताइए सारे देवताओं का आगमन मेरे कुटिया में हुआ है, क्या प्रयोजन है? तो इंद्र ने कहा कि हमें आपका शरीर दान में चाहिए, क्योंकि आपको मार के आपके हड्डियों से हम क्या बनाएंगे? हाँ वज्र बनाएंगे। तो जब उनसे मांगा तो दधीचि मुनि कहने लगे अरे मूर्ख देवताओं, आपको ये पता नहीं है जब व्यक्ति का मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति मृत्यु की इतनी भयानक वेदना होती है कि उस वेदना को न सहन करने के कारण व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। हम देखते ना कि मूर्छित हो गए मरने से पहले, दो तीन दिन पता ही नहीं उसका क्या चल रहा है, जीवित है या मरा हुआ है, क्योंकि मृत्यु की वेदना असहनीय है। इसलिए भागवत कहता है 40,000 बिच्छू आपको एक साथ क्या करते हैं? डंक मारते हैं, उतनी भयावह वेदना। जैसे मुझे याद है मुझे एक बार बिच्छू ने काट लिया था पाँव में, तो इतनी कष्ट था पूरे शरीर में, ऊपर तक पेन हो रहा था और पूरे दिन था। तो मैं सोचा कि भागवत कहते हैं 40,000 बिच्छू आपको काटेंगे तो क्या हालत होगी मृत्यु के समय में। तो दधीचि मुनि कहते हैं, वो कहते कि आपको पता नहीं है कौन ऐसा व्यक्ति है, इवन विष्णु भी जिसके पास आकर भिक्षा मांगे किसी व्यक्ति के पास, कि अरे आप मुझे अपना शरीर दे दो, इस संसार में कोई है अपना बॉडी देने के लिए? कोई नहीं है। तो लेकिन देवतागण कहते हैं कि जो वास्तव में बहुत बड़े हृदय का व्यक्ति होता है, जिसे महात्मा कहा जाता है, वो सदैव दूसरों पर परोपकार करना चाहता है। वो अपना शरीर ही क्या, अपना धन आदि ही क्या, सब कुछ दूसरों के हित के लिए प्रदान करने के लिए तत्पर होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां भगवान मृत्यु के समय में उनका जो स्मरण होना है उसकी महानता का वर्णन करते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय स्मरण करने के लिए यह अभ्यास हम कर रहे हैं, है ना। जीवन में कई सारे एग्जाम्स देनी होती हैं, स्कूल से लेकर कई सारे एग्जाम देनी होती हैं, लेकिन एक एग्जाम हर एक को देने पड़ेगी, और वो मृत्यु ऐसी चीज है जिसका हर एक व्यक्ति को लाइफ में एक ही बार एक्सपीरियंस लेना होगा। कितनी बार? एक ही बार। डबल डबल एक्सपीरियंस नहीं ले सकते आप लाइफ में, एक ही बार। तो वैसे ही, और उसकी महानता क्या है कि ऐसे मृत्यु के समय में हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, और वो यदि नहीं हो रहा है तो विफलता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि शुकदेव गोस्वामी को जब परीक्षित महाराज की मृत्यु 7 दिन में होने वाले थे, तो उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? हाँ, सही ढंग से कैसे मरना चाहिए व्यक्ति को। आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं ना, तो हमें आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए। उसी में क्या छुपा हुआ है? आर्ट ऑफ लिविंग छुपा हुआ है। जब हम मरना सीखते हैं अच्छी तरह से, तो वह व्यक्ति जीना अच्छी तरह से सीखता है। और मरना कैसे सीखना है, पूरा यह अध्याय भगवान ने मृत्यु को डेडिकेटेड किया है। समर्पित किसको किया है? मृत्यु को। सारी चर्चा उसी की है इस अध्याय में, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति। तो भगवान स्मरण के बारे में कह रहे हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण होना चाहिए। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम मतलब ये शरीर। अंत काल में शरीर छोड़ते समय जिस व्यक्ति को मेरा स्मरण होता है अर्जुन, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे स्वधाम को प्राप्त कर सकता है। ये भगवान के वचन है, हम भगवान गारंटी दे रहे हैं। फिर उसके अगले श्लोकों में, श्लोक नंबर 9 से भगवान वर्णन करते हुए जा रहे हैं श्लोक नंबर 13 तक। तो इन 9 से लेकर 13 तक भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति अभ्यास कर सकता है ध्यान योग के माध्यम से मेरा स्मरण करने का। किस योग के माध्यम से? मेडिटेशन के बारे में भगवान वर्णन करते हैं, ध्यान। फिर अभी इस श्लोक में, श्लोक नंबर 14 और 15, इन दोनों श्लोकों में भगवान भगवान का स्मरण भक्ति योग से कैसे किया जाए उसकी महानता बता रहे हैं, कि भक्ति योग के द्वारा भगवान का स्मरण करने का अभ्यास कैसे करना चाहिए उसकी जो श्रेष्ठता है भगवान इन दो श्लोकों में बता रहे हैं, श्लोक नंबर 14 और 15। तो भगवान उनका स्मरण करने का जो सरलतम सूत्र है वो इन दो श्लोकों में प्रकट कर रहे हैं। पहले श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करने का क्या परम लाभ है, और दूसरे में वो और उसकी महानता बताते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण किस प्रकार से एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो भगवान अपने स्मरण करने की जो सरलता और सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसको एक छोटा सा बालक या युवा या कोई बूढ़ा व्यक्ति भी अपने जीवन में लागू धारण कर सकता है और सरलता से भगवान का स्मरण कर सकता है, तो भगवान इस स्मरण विधि को बता रहे हैं। इसलिए तो प्रहलाद महाराज जब छोटे से बालक थे, 5 साल के, स्कूल से वापस आए बोर्डिंग स्कूल से, तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने पूछा, हे मेरे बेटे, तुम स्कूल में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या सीख के आए हो? तो उन्होंने क्या कहा? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम।
उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में सबसे श्रेष्ठ चीज कुछ सीख के आया हूं तो वो भगवान विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में, कि उनके बारे में सुनना, उनके बारे में उनका कीर्तन करना और भगवान कृष्ण का नित्य रूप से स्मरण करना। तो इस प्रकार से भगवान इस विधि का वर्णन करते जा रहे हैं और विशेष रूप से भगवान अपनी जो भगवत भक्ति है उसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं कि भगवत भक्ति के द्वारा भगवान का स्मरण करना अत्यधिक सरल है। योग, ज्ञान, कर्म आदि के द्वारा भगवत स्मरण करना इस युग के लिए क्या है, बहुत अधिक कठिन है। लेकिन भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति निरंतर 24 घंटे कृष्ण को अपने मन में, अपने हृदय में धारण कर सकता है और उस धारण करने की जो विधि है उसको भगवान इस विशेष जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम योमां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो भगवान अपने अपने आप को जानना, भगवान कहते हैं कि मैं बहुत अधिक सुलभ हूं। मैं अधिक क्या हूं? हाँ, कई लोग बहुत अपना जीवन लगाते हैं, हाँ, अब कितना तपस्या करते हैं, हिमालय में जाकर एक पांव में खड़े होकर वस्त्र धारण न करते हुए हैं, भूखे प्यासे वहां तपस्या करते हैं, लेकिन वो भगवान की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को समझना नहीं चाहते। इसलिए भगवत गीता को केवल एक भगवान के शुद्ध भक्त के माध्यम से समझना चाहिए, भगवत गीता को शुद्ध भक्त के सानिध्य में सीखना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता केवल भगवान के भक्तों को ही रिवील हो सकती है। हाँ, भगवत गीता को समझने का एक ही योग्यता है कि भगवान का भक्त होना होगा। तो भगवान अपने आप को जानने की जो सरलता और सुलभ विधि है उसका वर्णन करते हैं और वो विधि क्या है, भगवान की भक्ति। क्या है वो विधि? भक्ति। तो भक्ति के बारे में हम निरंतर सोचते हैं, जो ज्ञान मार्गी, कर्म मार्गी, ध्यान मार्गी जो लोग हैं या अन्य अन्य जो आध्यात्मवादी हैं, वो सोचते हैं जो निठल्ले गवार, जिनको कुछ, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो श्रिया हैं, जिनको इतनी बुद्धि नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसा उनका मत है। लेकिन भगवान कहते हैं वो व्यक्ति सर्वाधिक बुद्धिमान है जो मेरे भगवत भक्ति में नियुक्त है। अर्जुन ने प्रश्न भी पूछा 12वें अध्याय की शुरुआत में, भगवान बताओ बताओ, क्लियरली बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके जो आपका ध्यान आदि में मग्न है या आपके भगवत भक्ति में जो लगा हुआ है नित्य रूप से, उनमें श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान कहते हैं कि मयैव मनाधस्त्वम्, हाँ, कि जिसका मन मुझमें लगा है और मेरी सेवा में, भक्ति में नियुक्त है, वो मेरे दृष्टि से वो व्यक्ति इस संसार में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति है, हाँ, या सर्वोत्कृष्ट मनुष्य है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्ति योग की जो महिमा है उसका वर्णन इन दो श्लोकों में करते हैं। तो भक्ति बहुत अधिक दुर्लभ है, तो भक्ति का वर्णन भगवान ने शुरुआत से लेकर अंत तक किया है। भगवान भगवत गीता का एंड भी करते हैं तो वहां भी जाते जाते भगवान फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हुए जाते हैं। जैसे हम किसी जगह जाते तो जाते जाते जो बोल के जाते हैं एंड में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान क्या कहते हैं आखिरी में, मन मना भव मद भक्त। उन्होंने पहले भी बोला था, बीच में भी बोला था और अंत में भी क्या कर रहे हैं, उसी शिक्षा को रिपीट कर रहे हैं। मतलब कोई चीज को जोर देना है तो उस चीज को बारंबार रिपीट किया जाता है, तो उसी चीज को कि मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो, मेरा भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा में लगो, इस चीज पर बल देने के लिए भगवान शुरुआत में, बीच में और 18वें अध्याय के अंत में उसी चीज को बोलते हैं कि मेरा भक्त बनो। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है भक्त बने कैसे बना जाए, भक्त बनने के लिए एक चीज को हम पकड़ के रखेंगे ना लाइफ में तो तो हम परमानेंटली भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और वो चीज हमसे छीनी नहीं जानी चाहिए, वो चीज से हमें दूर नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में जो मर्जी हो जाए। और वो चीज क्या है? भगवान के भक्तों का संग। इसलिए भागवत में जो पूछा गया भक्ति कैसे की जाए, हाँ, तो वहां शास्त्र कहते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगे न परिचायते, कि भक्ति तो भगवान के भक्तों के सहचार्य में संगति में आकर ही संपन्न हो सकती है। भक्त बना जा सकता है भगवान के भक्तों के संग में आकर। इसलिए कहते हैं साधु संग है भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कि भक्ति का जन्म कहां होता है? कहां होता है? भक्तों के संग में। भक्ति का जन्म भक्तों के संग में होता है। इसलिए भगवत भक्ति की जो श्रेष्ठता है वो सारे शास्त्रों में वर्णित की गई है, और हमें ये भगवत भक्ति को समझना होगा, भगवत भक्ति को सीखना होगा, हाँ, साधु गुरु और शास्त्र के माध्यम से। और भगवत भक्ति क्या वस्तु है? ये ऐसा धन है जिसके द्वारा आप कृष्ण को खरीद सकते हो। क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। भगवान को खरीदने के लिए किसी और धन की आवश्यकता नहीं है। भगवान को खरीदने के लिए एक ही धन व्यक्ति के पास होना चाहिए, और वो है भगवत भक्ति रूपी धन। प्रभुपाद ने भक्ति शब्द का अनुवाद इंग्लिश में किया, जनरली लोग भक्ति मीन्स डिवोशन, तो प्रभुपाद ने अनुवाद किया भक्ति शब्द का अंग्रेजी में डिवोशनल सर्विस। भक्ति का अर्थ है कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता तत्परेण निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। भक्ति क्या है कि व्यक्ति को अपने सारे भौतिक उपाधियों को त्याग कर अपने उपाधियों को साइड में रखो। जैसे चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आप अपनी पहचान बताइए, आप हो कौन? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना हम विप्रो न च नरपति न मनस्तो यतिर्वा। कहते हैं कि मैं ना ब्रह्मचारी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना सन्यासी हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं। तो कोई पूछे कि फिर हो कौन? चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपीर भर्तृ पद कमल और दास दासानुदास। तो मैं तो गोपियों के जो पालक हैं, गोपियों के जो भर्ता हैं कृष्ण, उनके सेवकों के सेवकों का सेवक हूं। ये हमारी असली पहचान है। इससे क्या सीखते हैं हम कि चैतन्य महाप्रभु ने ये जो वर्ण और आश्रम की जो उपाधि है, हम गर्वित होते, देखो मैं सन्यासी हूं, मेरे पास डंडा है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत बड़ा गृहस्थ हूं, मैं वानप्रस्थ हूं, मैं त्यागी हूं, हाँ, मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास बहुत बड़ी पोजीशन है। ये सब क्या है? उपाधि है। ये उपाधियां जब तक हमसे चिपकी रहेंगे तब तक हम भगवत भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, और भगवत भक्ति को अच्छी तरह से विकसित भी नहीं कर सकते। इसलिए इन सारे उपाधियों को त्याग कर भगवत भक्ति को ग्रहण करना होगा। और इन उपाधियों को त्याग कर हम क्या करते हैं? ऋषिकेना ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। हाँ, भक्ति क्या है कि अपने इंद्रियों के माध्यम से, हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और एक मन है। हाँ, तो इस प्रकार से 11 इंद्रियों का एक प्रकार से क्या है? समुच्चय हम क्यारी कर रहे हैं। तो इन सारे इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के जो स्वामी हैं, जिनका नाम क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिक का मतलब है इंद्रिया, और ईश का मतलब है स्वामी। जो ऐसे इंद्रियों के जो स्वामी है उनकी सेवा में अपने इंद्रियों को नियुक्त करना, वो भगवत भक्ति है। इसलिए भागवतम में महाराज अम्बरीश का उदाहरण आता है कि राजा अम्बरीश इतने बड़े राजा थे, जब उनका डिस्क्रिप्शन आता है भागवत में तो उनके बारे में लिखा गया है सवे मन कृष्ण पदारविंदयो वाचा शिवैकुंठ गुणान वर्णने, कि ऐसे महाराज अम्बरीश ने सबसे पहले इन 10 इंद्रियों का जो राजा है मन, उसको क्या किया, सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, सबसे पहले ये पागल मन को उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों में नियुक्त किया। और जब प्रमुख मन एंगेज हो जाता है कृष्ण के चरणों में तो सारी ये इंद्रियां उस मन को क्या करती है, फॉलो करती है। हम मन के गुलाम हो जाते हैं, जैसे मन किसी वस्तु में लग जाता है, जैसे मन को मन में डिजायर आ गई मुझे ना गोल गप्पे खाने हैं, और वो कहा के वहां लाल किले के आसपास चांदनी चौक में मिलने वाले, यहाँ बैठे बैठे मन घर में बैठे बैठे विचार करता है तो मन वहां चला गया, मन ने योजना बना ली, सब कुछ तैयारी कर ली, जाना कैसे, पहुंचना कैसे, कौन से शॉप बेस्ट शॉप है, हाँ तो फिर बाकी इंद्रियां फिर कार्य करने लगती है, हाथ पांव चलने लगते, इकट्ठा करता है सामान, गाड़ी की चाबी लेता है, बैठता है, जोर से रेस मार के भगा के ले जाता है, बाकी सारी इंद्रियां क्या होती है उसको फॉलो करती है। इसलिए परम आवश्यक है मन कृष्ण पदारविंदये, तो इसलिए जीव के धर्म का जो वर्णन भागवतम में आता है तो जीव का सबसे बड़ा धर्म क्या है, कौन से धर्म का पालन करना चाहिए। हमें लगता है कि मैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आदि धर्म का पालन करना चाहिए, नहीं, जीव का धर्म क्या है, शास्त्र कहते हैं सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, सवे पुंसा, पुंसा का मतलब है मनुष्य, सवे पुंसा परो धर्म, तो कई प्रकार के धर्म है, स्त्री का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चों का धर्म, समाज का धर्म, ये बहुत सारे धर्म है, एक प्रकार से ड्यूटीज जिसे कहते हैं, तो लेकिन शास्त्र कहते हैं परो धर्म मतलब परम सर्वोत्कृष्ट धर्म क्या है, यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि अधोक्षज, अधोक्षजे कृष्ण का नाम है, अधोक्षज का अर्थ है जो हमारे इन भौतिक इंद्रियों से परे है, अधो अक्षज जो आंखों से क्या है, भौतिक आंखों से परे है, ऐसे परम भगवान के प्रति भक्ति का विकास हृदय में करना, यही हर एक मनुष्य का सर्वोत्कृष्ट या परम धर्म है। तो ऐसी भक्ति का विकास करना या भक्ति विकसित करना, तो भक्ति कैसे होनी चाहिए भगवान के प्रति, जैसे इस श्लोक में पहला शब्द आया है अनन्य चेता सततम, उसी शब्दों को भागवत कहता है कि अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, अहेतु की भगवान के प्रति जो सेवा की भावना है, भक्ति का मतलब है सेवा की भावना, सरल, कई बार हमें भक्ति को समझ में नहीं आता लेकिन सेवा समझ में आता है क्योंकि सेवा लेने की आदत है, थोड़ी बहुत करने की भी आदत है, तो भक्ति का मतलब है सेवा करना। तो ये सेवा सूत गोस्वामी कहते कि कैसे होनी चाहिए, अहेतु की, जिसमें अपना कोई मोटिव ना हो। प्रभुपाद ने कहा डिवोशनल सर्विस मीन्स सबसे पहले आप ये सीखो कि मुझे कृष्ण से कोई डिमांड नहीं करनी है, ये सबसे पहले भक्ति का पहला कदम है, शुद्ध भक्ति का पहला कदम है कि मुझे कृष्ण से कोई डिमांड करनी नहीं है। नहीं तो भक्ति का मतलब या अध्यात्म का पालन या अनुशीलन करने का मतलब है कि हम सदैव भगवान से डिमांड करते रहते हैं। तो जो चीज भागवत में कही है अहेतु की, कि भगवान के प्रति जो भगवत भक्ति है उसके उसमें हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कहते ना हिडन एजेंडास, हम ऊपर से दिखाते बहुत अच्छे खासे भक्त हैं लेकिन अंदर में क्या है, बहुत सारे हिडन छुपे हुए एजेंडास हैं, छुपे हुए डिमांड्स हैं, मांगे हैं, अपने अपने हेतु हैं, अपने अपने भौतिक स्वार्थ हैं जिनको लेकर हम भगवान के पास आते हैं। तो ऐसे कोई भी मोटिव, कोई भी भौतिक स्वार्थ भगवान की सेवा में हमारे हृदय में नहीं होने चाहिए। और ऐसे जो भगवान की सेवा है दूसरी चीज क्या है वो कहते हैं, एक तो हो गया अहेतु के और दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है अखंडित, जिसको इस श्लोक में शब्द गीता के यूज किया है सततम। सततम मतलब कंटिन्यूअसली, कोई बीच में रुकावट नहीं। भगवत भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भगवान की सेवा ऐसी करनी चाहिए हमें कि उसमें कोई रुकावट नहीं। कंटिन्यूअसली जो भी हमें सेवा हमें मिलती है बिना किसी रुकावट के भगवान के 100% प्रीति हेतु हमें करते रहना चाहिए। तभी वास्तव में वो जो भक्ति रूपी धन है हमारे हृदय में संचित होगा और इस धन के बदले हम कृष्ण को खरीद सकते हैं या कृष्ण को जीत सकते हैं। इसलिए शास्त्र हरि भक्ति सुदनय में वर्णन आया है कि कृष्ण का एक नाम क्या है, अजित है। क्या नाम है? अजित। तो वो कहते हैं सदा मुक्तोपि बद्धोऽस्मि भक्तेन स्नेह रज्जुभि अजितो हम तैर अवेशोपि वशीकृत। वो कहते हैं कि सदा भगवान अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं, प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को भक्त बांध देते हैं और ऐसे भक्ति के कारण भगवान जिनका नाम अजित है मतलब जिनको जीतना असंभव है फिर भी उनको जीता जा सकता है। किस माध्यम से? भगवत भक्ति के माध्यम से जीता जा सकता है और वो रस्सी जीतकर भगवान को बांधा जा सकता है। और वो कैसे बांधा जा सकता है? स्नेह रज्जु भी। स्नेह का मतलब है अफेक्शन, प्रेम। देखो कुछ आज भी लोग इतने खतरनाक जानवर होते हैं उनसे भी इतना प्रेम रख के उसको क्या करते हैं, वश में रखते हैं, है कि नहीं? तो भगवान भी प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। इस संसार में हम किसी को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, किसी को अपना बनाना है या फेवरेबल करना है, उसको कंट्रोल करना है तो सबसे बड़ा तरीका क्या है? प्रेम, लव एंड केयर। क्या है दो चीजें? उसकी केयर और उसके प्रति प्रेम। ये दो चीजों के द्वारा आप संसार में किसी को भी अपने वश में रख सकते हो। लोग कई सारे वशीभूत करने वाले तंत्र मंत्र आदि का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये पावरफुल मंत्र है लव एंड केयर। कुत्ते से भी आप प्रेम करके उसका केयर करते हैं तो 24 घंटे आपके पीछे वो पूंछ हिलाते हुए आपकी परिक्रमा करता रहता है और आपको अपने दोनों पांव से प्रणाम करते रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी कोई निर्दयी नहीं है, उनके पास ऐसे नहीं कि हृदय नहीं है, प्रेम की भावना नहीं है या वो मूर्ति है या पत्थर है, नहीं। भगवान भी एक उनके हृदय में भी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, भावनाओं से भरी हुई कृष्ण के विग्रह हैं। तो कृष्ण भी अपने भक्त की सेवा के द्वारा जो प्रेम के माध्यम से की गई है उससे वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए तो यशोदा माता ने क्या किया था, कृष्ण को बांध दिया था। किससे बांधा था? रस्सी से नहीं, प्रेम से बांधा था। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो उस व्यक्ति के लिए, मुझे कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। किस चीज से? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम और थोड़ा जल, इसके द्वारा भी आप मुझे खरीद सकते हो लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? भक्ति। अश्नामी प्रयतात्मना, भक्ति का इसमें लेश होना चाहिए। ये जो ऑफरिंग्स हैं ये भक्ति से भरे होने चाहिए। इसलिए तो वृंदावन में कोई घंटी बजा के भगवान को ऑफरिंग नहीं करता था जब कृष्ण द्वापर युग में थे और ध्यान आंखें बंद करके घंटी बजाकर मंत्रों का उच्चारण करके भोग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जब वो गोपिकाएं अपने घर में दूध दही मक्खन आदि चरणी करती थी बनाती थी तो उनका हृदय भक्ति से भरा हुआ था, वो अपने पुत्र पति आदि के लिए नहीं बना रहे थे। जब वो कुछ भी ग्रह कार्य कर रहे थे उस ग्रह कार्य करने के पीछे उद्देश्य क्या था? कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण के लिए कर रहे हो। और ये घर में करते करते ये बनाते थे, कृष्ण जहां तहां हो, यशोदा माता के घर में, अपने घर में भोजन करना छोड़कर कृष्ण कहां भागते थे? इन गोपिकाओं के ग्रह में जाते थे और चुरा चुरा के खाते थे। जब भगवान के प्रति प्रीति या प्रेम भक्तिमय सेवा की भावना अत्यधिक होती है भक्त के कार्यों में, तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करने के लिए सारे बंधनों को तोड़कर आ जाते हैं। वह यशोदा माता, नंद महाराज आदि का जो बंधन है, उन सबको तोड़कर कृष्ण कहां पहुंच जाते थे? उन गोपिकाओं के घर में जाते थे और उनको ऑफर करने की आवश्यकता नहीं थी। गोपिकाएं चाहे वो पात्र अंधेरे में भी रखें तो इतना अधिक उसमें क्या मिला हुआ था? प्रेममयी सेवा की भावना। वो केवल नॉर्मल दूध नहीं था, नॉर्मल मक्खन नहीं था, नॉर्मल दही नहीं था, उसमें क्या क्या इंक्लूड था? जो कृष्ण के प्रति प्रेम या सेवा की भावना है, भक्ति, वो भरी हुई थी उस दूध दही मक्खन आदि में। और कृष्ण अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जब भक्त के हृदय में भगवत भक्ति या सेवा की भावना होती है तो कृष्ण अपने सारे विधि विधान को त्याग कर वो भागते हैं और उसको स्वीकार करना चाहते हैं। अपने हाथ से लेकर कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं, खाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जिस भक्त के हृदय में इस प्रेममयी सेवा की भावना होती है वो भक्त मुझे हर क्षण हर स्थान में देखते रहता है। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो व्यक्ति मुझे सदैव देखता है मैं भी उसे सदैव देखता हूं। तस्याहं न प्रणश्यामि, तो वो व्यक्ति सदैव मुझे हर स्थान में हर स्थिति में निरंतर देखते रहता है, उसके आंखों के सामने में कभी भी अप्रकट नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान अपने प्रेम के कारण भगवान को बांधते हैं। तो इसलिए हमें कोई चीज बढ़ाने का प्रयास करना है अपने जीवन में तो भगवत भक्ति को बढ़ाने के लिए तत्पर होना चाहिए। आयु हमारी बढ़ रही है, मृत्यु हमारे सामने नजदीक खड़ा हुआ है। मृत्यु क्या है? हमारे साथ चलता है। मृत्यु क्या करता है हमारे साथ? हम कहते हैं ना मैं अकेले वॉकिंग में जा रहा हूं, नहीं, आपके साथ कौन वॉकिंग में जा रहा है? कहते मैं अकेले स्नान करने के लिए जा रहा हूं, नहीं, बाथरूम में भी लोग गिर के क्या होते हैं? मरते। कौन आपके साथ जा रहा है? मृत्यु। तो मतलब मृत्यु हमारे साथ नित्य संगी है, वो हमारी संगति छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम उसको छोड़ना चाहते हैं। किसको अच्छा लगता है मृत्यु का आलिंगन करना? लगता है किसको अच्छा? बुढ़ापे का आलिंगन करना अच्छा लगता है किसी को? नहीं। तो लेकिन ये जो मृत्यु है, काल चाहे, वो हमारे साथ हमारा संगी बनके हमारे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं फिर भी अज्ञानता के कारण इस भौतिक जगत की जो झूठी चकाचौंध है उसमें पागल हो रहा हूं। जब अज्ञानी व्यक्ति होता है तो भौतिक जो चकाचौंध है उससे उसकी आंखें मिट जाती हैं और उसको फिर उचित रूप से दिखाई नहीं देता। इसलिए हम क्या गाते हैं सबसे पहले? ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य। तिमिर अंध मीन्स बहुत गहरा अंधकार, ऐसा वैसा अंधकार नहीं। कैसे एक अंधकार होता है? अमोशा की रात, सिटी में तो पता ही नहीं चलता अमोशा की रात है ये पूर्णिमा की रात है। अब गांव में जाओगे तो वहां आपको अनुभव होगा अमोशा की रात, तो बिल्कुल क्या होगा, आपके साथ कोई खड़ा है तो भी वो आपको दिखाई नहीं देगा, इतना अंधकार। पूर्णिमा की रात चंद्रमा, और चंद्रमा जो छोटा छोटा होता है, चांदनी होती है, चांदनी होती है तो हल्का सा प्रकाश है। तो लेकिन हमारे जीवन में कौन सा अंधकार है? अमोशा से भी अधिक गहरा काला अंधकार है। इसलिए वो शब्द यूज किया है तिमिर अंधर्शन, तिमिर अंधा। इतना अंधकार है तो फिर हमें क्या चाहिए? ज्ञान, प्रकाश चाहिए। और प्रकाश क्या है? ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम एना। हमें शलाका, शलाका होते ना काजल लगाने के लिए, और कौन सा अंजन? ज्ञान का अंजन, उससे आंखें खोल दी गई है प्रकाश। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत का मतलब यही है, भा का मतलब है आभा, भा का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश क्या है? कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। तो प्रकाश क्या है? कृष्ण की भक्तिमय सेवा में नियुक्त होना। अंधकार क्या है? माया की सेवा में नियुक्त होना। और रथ का मतलब है यंगेश, एंगेज होना। तो जो भारत का मतलब है, जो प्रकाशमय कार्य में, आध्यात्मिक कार्य में, भगवत भक्ति के कार्य में रत होता है, वो वास्तव में भारत में है, वो वास्तव में भारतवासी कहलाता है। इसलिए तो पहले संस्कृति में आर्य कहा जाता था, आर्यन, आर्य संस्कृति कहते हैं। आर्य मतलब वो मनुष्य जो अपने जीवन के परम लक्ष्य से ज्ञात है, अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानता है, और उस परम लक्ष्य को अचीव करने के लिए अपना जीवन ढालता है और वैसा आचरण करता है। अनार्य मतलब पशु के समान जीवन, कोई जीवन में कोई ज्ञान का अभाव, अनार्य। इसलिए भगवान अर्जुन को डांटते दूसरे अध्याय में, अनार्य दुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुना। अरे अर्जुन, तुम आर्य की भूमि में हो और तुम अनार्य के जैसे आचरण कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सारी तो तुम्हारे जीवन में अपयश की ला सकती है, तुम्हारा अकीर्ति फैल सकती है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति को भगवत भक्ति, ये जो ज्ञान हमें प्राप्त करके भगवत भक्ति का, भगवत भक्ति रूपी जो धन है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और भगवत भक्ति का धन हमारे जीवन में बढ़ता है कैसे? जब हम भगवान के भक्तों के संगति में आकर अपने इंद्रियों के माध्यम से भगवान की जो सेवा है प्रेममयी, उसको करने का प्रयास करते हैं। और ये ऐसा धन है भक्ति कि जिसके द्वारा कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त है, जिसके हृदय में प्रेममयी सेवा की भावना है, मैं उस भक्त के अधीन हो जाता हूँ। भागवत में वर्णन आता है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का। तो जो दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था, और एक सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भाग रहा था उनको मारने के लिए, दुर्वासा मुनि इतने बड़े मुनि, वो भगवान के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते मुझे सुदर्शन से बचाओ। भगवान कहते हैं तुमने मेरे भक्त को ठेच पहुंचाई। भक्त क्या है? भगवान का हृदय है। क्या है? क्या है भगवान का? हाँ, जब भक्त के प्रति हम कुछ अपराधमय वर्तन या कार्य करते हैं, तो हम भगवान के हृदय में क्या कर रहे हैं? खींच पहुंचा रहे हैं, या आघात या प्रघात कर रहे हैं। तो दुर्वासा को कहा कि अरे दुर्वासा, तुमने क्या किया है? मेरे हृदय को एक प्रकार से मेरे हृदय पर प्रहार किया है, क्योंकि मेरा हृदय मेरे भक्त है, और मेरे भक्त का हृदय कौन है? मैं हूं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोर वैष्णव परान, कि भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद सदैव निवास करते हैं। और गोविंद कहते हैं कि मैं सदा, मेरे हृदय में भी सदैव मेरे भगवान, उनके जो भक्त हैं वो निवास करते हैं। तो इसी कारण से जब दुर्वासा मुनि पहुंचे तो भगवान उनको कहते हैं अहम भक्त पराधीना, कहते मैं किसके आधीन हूं संसार में? तो किसके आधीन हो? मेरे भक्तों के आधीन, पराधीन, मेरे नहीं स्वतंत्र एव द्विजा, हे ब्राह्मण मेरे पास स्वतंत्रता नहीं है। भगवान ने आज तक कोई आंदोलन नहीं छोड़ा, छेड़ा नहीं कि अरे मुझे स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, बहुत हो गया, इन भक्तों ने मुझे क्या रखा है, परतंत्र में रखा है। तो भगवान आनंदित होते हैं, वो सदैव अपने भक्तों के हृदय में निवास करना चाहते हैं, उनके अधीन रहना चाहते हैं। क्यों? साधु भीर ग्रस्त हृदयो, साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिया, कि मेरे भक्तों का जो हृदय है मेरे भक्तिमय सेवा से भरा रहता है, जिसके कारण मैं सदैव उनके अधीन रहता हूं, उनकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हो जाता हूं, और ऐसी सेवा की भावना से वो भक्त मुझे जीत लेता है। भक्ति योग भीष्म तोमा जेनिले समरे, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि भक्ति योग के माध्यम से जो भीष्म देव थे उन्होंने भगवान को जीत लिया। महाभारत के युद्ध में आप देखते हैं कि भगवान ने तो पूरा अनाउंसमेंट किए थे कि मैं कोई शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन वहां उनके भक्त ने गर्जना की, किसने? भीष्म देव ने भी, आज कुछ भी हो जाए, आज या तो पांडवों को मरना पड़ेगा उनमें से कोई एक या पांडव, या तो फिर कृष्ण को क्या करना पड़ेगा, अपने वचन को तोड़ना पड़ेगा, और वो भी उनको अस्त्र धारण करना पड़ेगा। तो भगवान के भक्त जब कुछ बोलते हैं तो भगवान उस कार्य को करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। कृष्ण लीला में हम देखते हैं माता यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया रस्सी से, अभी बांध दिया उस उखल को, तो कृष्ण को एक ही जगह बैठना चाहिए ना इतना बड़ा उखल लेकर, लेकिन कृष्ण क्या हुए, बैठे नहीं, उनको याद आया, किसकी याद आई, नारद की याद आई। उन्होंने कहा नारद जब एक वन से गुजर रहे थे कैलाश में, तो वहां एक सरोवर में कुबेर के जो पुत्र हैं नल कुंवर और मणिग्रीव, ये जो दो पुत्र नग्न होकर युवतियों के साथ नग्न अवस्था में जल में स्नान कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, और उस सरोवर के किनारे नारद जैसे महादुष्ट जा रहे हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, निर्लज्ज के भांति वो स्त्रियों ने अपना शरीर ढक लिया, लेकिन ये नल और कुंवर ने अपना शरीर ढका नहीं। नारद ने सोचा कि ये तो केवल धन और ऐश्वर्य का मद है, जब व्यक्ति के पास धन और ऐश्वर्य आता है तो व्यक्ति क्या करता है, सूद बुद खो देता है और सब कुछ भूल जाता है। और कलयुग का एक लक्षण भी है कि कलयुग के लोग अपने स्किन का स्किन को एक करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रदर्शन करेंगे। कलयुग के लोगों का लक्षण क्या है, अपने चमड़ी का प्रदर्शन करना। इसलिए भागवत कहता है कलयुग में लोगों के कपड़े कितने हो जाएंगे, छोटे 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 होते जाएंगे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गौर। तो कलयुग में भी लोगों के कपड़ों की साइज क्या हो जाएगी, छोटे छोटे। तो क्यों, क्योंकि कलयुग के लोग अपना जो ये भौतिक देह है उसका प्रदर्शन करना चाहेंगे, ये उनकी घृणित सिचुएशन है। तो ऐसे नारद ने सोचा कि ये तो नग्न रहना चाहते हैं, अपने स्किन को दिखाना चाहते हैं, तो नग्न अवस्था कौन है, वृक्ष है, वृक्ष कोई कपड़े नहीं धारण करते तो इनको दंड देना होगा। साधु आशीर्वाद भी दे या दंड भी दे, दोनों उस व्यक्ति के हित में होता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उनको शाप दिया, हाँ, कि आप क्या बनो, पेड़ बनो, और लेकिन कहाँ बनो, नंद महाराज के आंगन में। तो जब माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा तो कृष्ण उखल के साथ, इतना बड़ा उखल, हाँ, उनको लगा नारद ने बोला है, और ये भी कहा था कि वहां कृष्ण आपका उद्धार करेंगे उस स्थिति से, तो भगवान को उतना पूरा उखल खींचना पड़ा, किसके वचन को पूर्ण करने के लिए, नारद की, खींच खींच के ले गए, और बड़े पेड़, दो पेड़ थे ऐसे नल कुंवर मणिग्रीव, हाँ, पेड़ बने थे, उसमें के बीच में ले गए और बीच में लेके शाम में बैठे, वो उखल अटक गया और जोर से खींचा ताकि ये वृक्ष उन्मूलित हो जाए या फिर गिर जाए। तो भगवान सदैव अपने भक्तों के अधीन रहते हैं या वश में रहते हैं, और उनके वचनों की पूर्ति करना ही भगवान का जीवन है। भगवान को भक्तों के वचनों को पूर्ति करने के लिए बहुत आनंद आता है। तो उसी प्रकार से जब भीष्म ने ये बोला तो भगवान उस दिन देखा कि वास्तव में घमासान युद्ध कर रहे भीष्म, बहुत शक्ति में है और अर्जुन, भगवान अर्जुन के सारथी बने थे, इतना युद्ध हो रहा था, भगवान ने देखा आज मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा तो अर्जुन मेरे रथ में बने नहीं रहेगा, अर्जुन को गवाना पड़ेगा। तो भगवान क्रोध में आकर उतर जाते हैं और क्या करते हैं, रथ का पहिया लेकर फेंकने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वहां शरणागत हो जाते हैं भीष्म। भीष्म अपना सब कुछ छोड़कर केवल इसी दृश्य को देखते रहते हैं और कृष्ण ऐसे मुद्रा में हाँ चक्र उसको लेके पहिया को लेकर रथ के, और भीष्म देखते रह गए और भीष्म ने भी प्रार्थना ही करनी शुरू की। उन्होंने कहा और मृत्यु के समय भी जब शरशय्या में थे भीष्म तो उनको भी वही रूप याद आ रहा था। महाभारत के युद्ध में जहां भगवान ने अपने हाथ में उस रथ का पहिया धारण किया हुआ था, उसी चीज पर चिंतन करके उसी चीज के बारे में सोच सोच के शरशय्या पर बाद में जो भीष्म है अपने देह का त्याग करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति योगे भीष्म तोमा जिनिला समरे, भक्ति योगे यशोदा बांधिला तुम्हारे, कि भक्ति योग के कारण ही यशोदा ने आपको बांधा है। और फिर आगे कहते हैं भक्ति योगे तुम्हारे बेचिले सत्य भामा, कि भक्ति योग के कारण ही हे कृष्ण आपको यशोदा ने बेच दिया था। एक बार कब बेचा था, कब बेचा था, जब नारद मुनि द्वारका गए थे। मतलब भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि कृष्ण उस व्यक्ति के हो जाते हैं। इसलिए भक्ति हमें गंभीरता से लेनी होगी और गंभीरता से उस पर कार्य करें, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तो ऐसी सत्यभामा ने भगवान को सेल किया था, बेच डाला था नारद को। नारद मुनि जब गए द्वारका, गए तो खाली हाथ नहीं गए, भगवान के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, क्या कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, मिलने का वही है। मंदिर जाते हो तो आपको खाली हाथ नहीं जाते, हाँ गुरु या महान भक्तों को मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, हाँ ये एटिकेट्स है। तो नारद भी गए द्वारका तो खाली हाथ नहीं गए, क्या लेके गए अपने साथ, पारिजात पुष्प लेने ले गए। तो देखा भगवान बैठे हैं रुक्मिणी के महल में, रुक्मिणी और भगवान बैठे पास पास, और कहा कि भगवान ये रहा पुष्प, ये आपको अर्पित करता हूं, लेकिन जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते ना उनको दे दीजिए। और साथ में कौन बैठे थे, रुक्मिणी। भगवान के पास क्या सामर्थ्य है कि रुक्मिणी को मना करे कि मैं इससे प्रेम नहीं करता, सबसे अधिक मेरी दूसरी रानी ज्यादा प्रिय है। उन्होंने फूल लिया और इस हाथ से यहां दे दिया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं दूसरे महल में सत्यभामा कालिंदी या बाकी जो रानियां हैं उनके लिए ले जाऊं। तो यहाँ प्रणाम आदि करके भगवान से बात करके नारद उनके महल में चले गए। किसके महल में, सत्यभामा। सत्यभामा के पास गया और कहा आपको पता है क्या हुआ अभी अभी, हाँ जो सबसे प्रिय कृष्ण को तो रुक्मिणी है, तुम्हारी तो ऐसी दशा है, वो फूल तो उनको दिया, इनको आया गुस्सा। उन्होंने कहा फूल फूल नहीं चाहिए, मैं तो पेड़ लाके रखूंगी, पेड़ ही डिमांड करूंगी। तो नारद, नारद की शिष्य थे, नारद की शिष्य कौन थे, सत्यभामा। सत्यभामा नारद जी से हमेशा गाइडेंस लेती रहती थी। तो सत्यभामा ने पूछा उपाय बताइए क्या करें, तो नारद ने कुछ उपाय बताया। जो तपस्या उन्होंने वो की, वो कार्य या व्रत किया, और रियली देखा गया कि एक दिन भौमासुर का वध करने के लिए कृष्ण जब गरुड़ के ऊपर बैठकर चले जा रहे थे तो उन्होंने सत्यभामा को भी अपने साथ लिया। भौमासुर का वध करके वहां से भौमासुर के घर से या महल से इंद्र की जो माता है आदिति के कुंडल ले लिए है जो भौमासुर ने चुराए थे। भगवान स्वर्ग में गए, इंद्र के माँ को मिले, उसको कुंडल दिए, और आते आते नंदन कानन जो गार्डन है उसके ऊपर से उनका फ्लाइट जा रहा था, गरुड़ा एयरलाइंस है कृष्ण का, क्या है गरुड़ा एयरलाइंस। तो वह सत्यभामा ने नीचे देखा, अरे ये तो पारिजात वृक्ष है, तो पारिजात वृक्ष भगवान के लिए लैंड करिए। गरुड़ा को नीचे किया, भगवान अभी भगवान के पास सामर्थ्य नहीं थे, अब उनको देख पुष्प दिया था, इनको क्या देना है, पूरा वृक्ष। तो गए हैं पूरा वृक्ष उठा दिया ले आए, तो इतनी खुश थे। कौन खुश थे, सत्य भामा, जब अपने महल में लाए तो अपने आंगन में लगाया पारिजात वृक्ष, पूरे द्वारका में सुगंध। पारिजात पुष्प का पुराणों में बहुत अधिक कई अध्यायों में वर्णन आया है, तो वहां वो कहते कि पूरे द्वारका में उसकी सुगंध फैले हुए थे। और फिर नारद आते हैं, कहते सत्यभामा कैसे चल रहा है तुमका, आपका तो सत्यभामा कहते कि आपका व्रत बहुत पावरफुल है, कृष्णा भी मेरे वश में हो गए हैं। तो कहते कि वो कहते आपकी क्या सेवा करो, आपकी क्या दक्षिणा क्या दो आपको। तो नारद ने कहा तुम्हें जो सबसे अधिक प्रिय वस्तु है ना, या प्रिय कोई है तो मुझे दक्षिणा के रूप में ले लो। सत्यभामा ने कहा मुझे तो सबसे प्रिय कोई है तो वो कौन है, कृष्ण। कृष्ण तो अंदर ही बैठे थे अंदर के रूम में, कृष्ण का हाथ पकड़ा सत्यभामा ने और किसके हाथ में सौंपा, नारद के। इसलिए तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भक्ति योगे तुम्हारे बेचिले सत्यभामा। भक्ति योग के कारण इतना सामर्थ्य भक्त के पास आता है कि सत्यभामा ने कृष्ण को बेच डाला, नारद ने खरीद लिया। नारद हाथ पकड़ के ले जा रहे थे तो बाकी रानियों ने देखा, उन्होंने कहा अकेले सत्यभामा का नहीं है, हमारे भी है, हमें वापस लेना होगा कृष्ण को। तो नारद कहते कि एक उपाय है, कैसे वापस ले, तो उन्होंने क्या मंगाया, तराजू। कहा कृष्ण को एक एक साइड में बिठाओ और दूसरी ओर आपके जितने गहने आदि है आभूषण वो डालो, और यदि पलटा, क्या कहते हैं उसको, तराजू के दो भाग जो भी समान हो जाने चाहिए, तो फिर कृष्ण को मैं आपको समर्पित करूंगा, सौंप दूंगा, और वो धन जो भी गोल्ड है वो मैं ले लूंगा। तो सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण डाल दिए कृष्ण के, कृष्ण वो तराजू टच के मस नहीं हो रहा था, कृष्ण नीचे वो साइड वो ऊपर था दूसरा भाग। फिर सत्यभामा भाग के गई अपने घर के सारे तिजोरी खोल खोल के जितने भी गहने कहां कहां छुपाए होंगे वो ला के सारे डाल दिए। फिर वैसे की वैसे उस समय दूसरी एक सेविका बड़ी चतुर थी, उसने देखा रुक्मिणी सबसे बुद्धिमान रानी है, रुक्मिणी पास गई, रुक्मिणी के पास, रुक्मिणी क्या कर रही थी, तुलसी की सेवा कर रही थी, तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, तुलसी की प्रेयर्स का उच्चारण कर रहे थे और कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे। तो उनको ये बताया कि बाहर ये कांड हो रहा है, आप चलिए। तो उस समय रुक्मिणी कहते ठीक है अभी मैं आती हूँ। एक तुलसी का पत्ता अपने साथ लेती है पत्र, और आकर क्या करती है, कहते हटाओ सारे, हाँ हेरे जवाहरात मोती सब हटाओ। वहां तुलसी का एक पत्र जिसके ऊपर रुक्मिणी कृष्ण लिखती है, क्या लिखती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जब रुक्मिणी ने लिखा और कहा सारे हेरे जवाहरात हटाओ, और वो तुलसी पत्र जिस पर कृष्ण अंकित था वो रखते ही पूरे कृष्ण ऊपर हो गए, इतना भार हो गया कृष्ण ऊपर हो गए। और नारद को, बेचारे नारद को क्या ले जाना पड़ा, अभिनक्पात नाम नामिना, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो नारद कृष्ण को ले जाने वाले थे लेकिन उनको कृष्ण का नाम ले जाना पड़ा तुलसी पत्र के साथ। जैसे हम तुलसी माला में नाम जब करते हैं ना, तो वैसे तुलसी माला या तुलसी पत्र और उसके साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवत भक्ति की बहुत महिमा है, भक्ति के बारे में भगवान का स्मरण करना बहुत सरल है। इसलिए भक्ति के जो छह लक्षण हैं उनमें से एक है श्री कृष्ण आकर्षणीचा, कि श्री कृष्ण को आकृष्ट करने का सामर्थ्य रखती है। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्षा लघु कृत सुदुर्लभा साधारानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणीचा। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे जो छह लक्षण है भगवत भक्ति के, उसमें एक है श्री कृष्ण आकर्षण, कि भगवत भक्ति इतनी शक्तिशाली है, कृष्ण का स्मरण इतना शक्तिशाली है कि कृष्ण को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। इसलिए भगवत भक्ति अनन्य भावना से करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए तो इस श्लोक में कहा है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। अनन्य भावना से मेरा स्मरण करो नित्य रूप से। ऐसे व्यक्ति के लिए अर्जुन हे पार में सबसे अधिक सुलभ हो। तो इसी कारण से अनन्य भक्ति मतलब किसी मोटिव या भावना से रहित होनी चाहिए। इसलिए जब प्रहलाद महाराज के सामने नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो नरसिम्हदेव ने कहा कि कुछ मांगो ना। कुछ मांगते क्यों नहीं हो प्रहलाद, सारे लोग मेरे पास मांगने के लिए आते हैं। सबसे आगे कोई मांगते तो इंद्र है, उस उनके जीवन में कुछ भी हो जाए हमेशा बड़ी बड़ी डिमांड्स लेके पहुंचते भगवान के पास। और भगवान अधिकतर अवतरित हुए भी हैं वो किसके लिए हुए हैं, इंद्र को राज्य देने के लिए। तो इंद्र का और भगवान का बड़ा साम्य है। इंद्र का लाइफ यदि मैं सोच रहा था उनका लाइफ कंपाइल करता हूँ, इतनी सारी घटनाएं हैं, इतने सारे उन्होंने अद्भुत अद्भुत कांड किए हैं कि उनको पढ़ पढ़कर आप केवल हंस सकते हो और उनकी दयनीय स्थिति के बारे में दुख व्यक्त कर सकते हो। तो ऐसे ही जो भक्ति है, प्रहलाद कहते भगवान की मांगो तो प्रहलाद कहते कि मैं व्यापारी नहीं हूं। हे नरसिम्हदेव मैं व्यापारी थोड़ी हूं, व्यापार नहीं करने के लिए मैं आया हूं कि उसके बदले आप, मैं भक्ति आपकी सेवा कर रहा हूं उसके बदले आप कुछ मुझे दो। नहीं, मैं वो सब चीजें नहीं चाहता हूं। और वही चीज चैतन्य महाप्रभु ने भी कही, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। कि हे कृष्ण नंद तनुज कृष्ण, मुझे न धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, नहीं फॉलोवर्स नहीं चाहिए, अनुयायियों की आवश्यकता नहीं है। न धनम न जनम न सुंदरी, सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री की मैं कामना नहीं करता हूं। हाँ, मैं क्या चाहता हूं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मों में चाहे मुझे बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़े लेकिन आपके चरण कमलों में मुझे मेरी भक्ति हो। उसी चीज को राजा कुलशेखर अपने मुकुंद माला स्तोत्र में कहते हैं, बहुत अमेजिंग प्रेयर वो कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो वो कहते हैं नाहं वंदे तव चरणयोर् द्वन्द्व द्वन्द्व महेतो कुंभे पाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नंदने नापिरन्तुं भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तम्। तो कुलशेखर भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं नाहं वंदे तव चरणयोर् द्वंद्व द्वंद्व है तो हे कृष्णा, मैं आपके चरणों की सेवा या चरणों में प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये भौतिक कष्टदायक संसार से मैं मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं। वो कहते कुंभी पाकम गुरुमपि हरे नारकम नापने तुम। और जो कुंभी पाक जो नरक है उसकी जो वेदना या कष्ट है वहां जो पीड़ा मिलती है उससे भी मुक्त होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। रम्या रामा मृद तनुलता, रम्या रामा जो सुंदर स्त्रियां हैं, जो कोमल शरीर की स्त्रियां हैं, उनका संग भी मैं प्राप्त करने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं करता हूं। भावे भावे हृदय भवने भावयेयं भवन्तुम। वो कहते कि मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कृष्णा कि आप मुझे शायद इस संसार में पुनर्जन्म बार बार मिले लेकिन आपके सेवा के प्रति, आपके भगवत भक्ति के प्रति मैं क्या हो जाओ, एक निष्ठ हो जाओ, आपका स्मरण मुझे होता रहे। हाँ, इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं और भी कई सारे उनकी प्रार्थनाएं हैं। तो इस प्रकार से भगवान का जो भक्ति है वो अनन्य भावना से हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्र इन सब चीजों से भरे पड़े हैं। तो भगवान सरलता से भगवत भक्ति नहीं देते, मुक्ति आदि भगवान दे देते, मुक्ति या भोग की सुविधा दे देते हैं, लेकिन एक चीज अपने पास छुपा के रखते, वो क्या है? भक्ति। क्योंकि भक्ति देंगे सुदुर्लभ है, रेयर है। हाँ, क्योंकि भगवान भगवत भक्ति देते हैं तो भगवान उस व्यक्ति की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवत भक्ति ये महान दान है। और भगवत भक्ति की जो सर्वोत्तम विधि है वो है भगवान के भक्तों का संग, और उस संग में आकर निरंतर कृष्ण नाम, कृष्ण के नामों का उच्चारण करके कृष्ण का स्मरण करना। जब ये हम अभ्यास करेंगे तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि वे दुखालय मां शाश्वत जगत से वो मुक्त हो सकता है। ऐसे नहीं कि पहले किसी ने इस दुखमय जगत से कोई व्यक्ति पार नहीं हुआ। भगवान कहते मां व्यक्ति पुनर्जन्म दुखालय मां शाश्वत, मुझे प्राप्त करके इस भौतिक दुखालय शाश्वत जगत से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? मेरी भगवत भक्ति करनी होगी और नित्य रूप से अनन्य भावना से मेरा स्मरण करना होगा। जब बिना किसी हेतु के हम भगवान की केवल केवल सेवा करना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं, यही तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं तो उसका अर्थ क्या है कि हे कृष्ण, हे श्रीमती राधिका, आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो सेवा की अहित की भावनी भावना होनी चाहिए। तो ऐसी भावना होगी तो कृष्ण उस भक्त का नित्य स्मरण करते हैं। हाँ, और जिस प्रकार से भक्त भगवान का स्मरण करता है उस प्रकार से कृष्ण भी क्या करते हैं? भक्त का स्मरण करते हैं। तो इस श्लोक में कई सारी चीजें हाँ सीखने के लिए हैं। आप इसके जो अनुवाद तात्पर्य आदि पढ़ सकते हैं पर्सनली, और इससे हम यही शिक्षा ले सकते हैं। और इसी भक्ति योग को देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए, स्वयं भक्त बने। और क्योंकि भक्ति भगवान नहीं दे सकते, भक्ति कौन देते हैं? भक्त। इसलिए भक्ति स्तु भगवत भक्ता, भक्तों के माध्यम से भक्ति हमें मिलती है और जिसके द्वारा हम कृष्ण को अपना बना लेते हैं। तो ऐसी भगवत भक्ति की सरलतम विधि है भक्तों के संग में आकर प्रेममयी सेवा करना। और सर्वोत्कृष्ट प्रेममयी सेवा क्या है? उनके नामों का उच्चारण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।